अनिकेत जी इधर उधर देखते हुए बोले, तुम कुछ याद नहीं कर रही थी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं यहाँ घर देख रही थी तुम्हारा।
हाँ, मैं घर देख रही थी।
घर तुम्हारा अच्छा है।
सोनाक्षी जी अनिकेत जी से नजरें चुराते हुए बोल रही थी, और क्यों ये अनिकेत जी भी समझ पा रहे थे। सोनाक्षी जी अनिकेत जी की ओर देखकर, एक नज़र देखकर वहां से दूसरी तरफ चली गईं। अनिकेत, तुम्हारे इस घर में कोई तस्वीरें क्यों नहीं हैं? तुम्हें तो पसंद है ना तस्वीरें रखना, खासकर अपनों की।
ये सुनकर अनिकेत जी हंसने लगे।
सोनाक्षी जी रुककर हैरानी से उनकी ओर देखती हैं। वो सामने आकर खड़े हो गए।
घर घर अपनों से होता है सोनाक्षी, और ये घर नहीं है क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है। अपनों की तस्वीरें अपने ही नहीं हैं मेरे पास, अपनों की तस्वीरें कहाँ से होंगी?
ये सुनकर सोनाक्षी जी की आंखें हल्की नम हो गईं। उन्हें अनिकेत जी की आंखों में उदासी के साथ दर्द भी दिखाई दे रहा था, जो मन के आईने की तरह सामने साफ प्रतीत हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे अनजाने में ही सही अनिकेत जी को उन्होंने चोट पहुंचा दी। जो शब्द अभी उन्होंने बोले थे वे आम ना होकर अब आहत भरे महसूस हो रहे थे, पीड़ादायक थे, जो अनिकेत जी को पीड़ा दे गए, जिसका दुख अब उन्हें भी हो रहा था।
उसी शाम दादी माँ, चाचू, चाची, मीलू वापस चले गए। अब तुम और विनीची भी जा रहे हो वर्तिका, एक साथ सब चले जाओगे क्या? मेहरा सदन के लॉन एरिया में आरवी वर्तिका को हक करते हुए उदासी भरे लहजे में बोली।
वर्तिका आरवी से अलग हुई और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली,
वो लोग क्यों गए ये तुम्हें पता है आरवी?
दादी माँ पहले रुकने वाले थे, है ना, पर वो नहीं रुके क्योंकि वो चाहते थे तुम अपना ध्यान उन पर देने की जगह अयांश पर दो, जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और रही बात मेरी और वीनू की, हम यहाँ रहें या अपने घर, एक ही बात है आरवी, हम तो आते जाते रहते हैं ना। यहाँ रह रहे थे क्योंकि दादू चाहते थे दादी माँ, चाचू, चाची, मालती जब तक यहाँ रहें हम सब साथ रहें, और हम रहे ना, और अब वो चले गए तो हम भी जा रहे हैं। वैसे हम रुक सकते हैं यहाँ पर पता है आरवी, रामू काका की तबीयत आज मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। वो बताते नहीं हैं, पूछा तो बोले ठीक हूँ, पर वो जैसे खांस रहे थे, उनकी हेल्थ खराब लगी मुझे। घर जाऊंगी तो उनका भी ख्याल रख लूंगी, वीनू की वो सुन भी लेगा और आराम कर लेगा, वरना वो आराम करता ही नहीं है।
हाँ, बताया विनीत जी ने, आरवी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली।
तुम टेंशन मत लो, हम यहीं तो हैं मुंबई में, और तुम्हारे साथ भी। अभी हम लोगों का यहाँ से जाना बेहतर है आरवी, ये तुम जानती हो। अयांश का मूड ठीक नहीं है, तुम फिलहाल उसी पर ध्यान दो। जो दादी माँ तुमसे कहकर गए हैं वो करो तुम, अयांश और अंकल को मिलाने की कोशिश, जिसमें वो दोनों हर्ट ना हो और सब ठीक हो जाए उनके बीच। और हम तो हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, जब मर्जी याद कर लेना, ओके?
अरे अब मुस्कुरा भी दो, तुम्हारा लटका चेहरा देखकर तो कभी नहीं जा पाऊंगी, और जाऊंगी तो मन भी नहीं लगेगा, थोड़ा हंस दो।
वर्तिका बोली कि विनीत की आवाज़ आई, नहीं हंसेगी। दोनों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो अभी के साथ विनीत अंदर से बाहर आ रहा था। दोनों पास आए तो वर्तिका वीनू की बाँह पर हाथ मारते बोली, क्यों नहीं हंसेगी?
विनीत ने आरवी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। इस चेहरे की रौनक, इन होठों की मुस्कुराहट तब लौटेगी दी जब अयांश की नाराज़गी आरवी से दूर हो जाएगी, वो इससे बात करेगा।
सबको हंसाने वाली हमारी ये आरवी तब हंसेगी जब अयांश मेहरा का मूड ठीक हो जाएगा, वो इसे अपने सीने से लगा लेगा और हंसेगा आरवी की बातों पर। अभी तो बोल भी नहीं रहा है वो इससे, तो बताओ कैसे ये लटका चेहरा खिल सकता है? इस चेहरे का नूर दूर जो है। ये सुनकर आरवी ने होंठ बाहर निकाल लिए, तभी अभी आरवी के कंधे पर बाहें डालते बोला, नूर दूर है तो पास भी आ जाएगा, ज्यादा देर रह भी नहीं पाएगा ना नाराज ना बोले बिना, हम मना भी लेंगे, भला कब तक नाराज रहेंगे मिस्टर मेहरा आरवी से?
वर्तिका आरवी की बाँह पकड़ते हुए बोली, ज्यादा देर नहीं रह पाएगा अयांश आरवी से, ना नाराज ना दूर, डोंट वरी आरवी, अयांश का मूड जल्द ठीक हो जाएगा, सुकून है आरवी अयांश का, कब तक अपने चैन से दूर रहेगा वो, देखना बेचैन होकर भागा चलाएगा, और हमारी आरवी मना लेगी अयांश को, है ना आरवी?
ये सुनकर आरवी हल्का सा मुस्कुरा दी, मना तो लेंगे हम, बस मौका मिल जाए, कि विनीत बोल पड़ा, मिल गया मौका? ये सुनकर तीनों विनीत की ओर देखते हैं, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी विनीत ने कुछ ऐसा कहा कि तीनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, और आरवी खुश होते हुए विनीत के सीने से लग गई।
विनीत सहमा सा बोला, आरवी मरवाओगी क्या? अयांश ने देख लिया तुम्हें मुझसे ऐसे लिपटा हुआ तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, पर मुझे उल्टा लटका कर मारेगा, मैं नहीं चाहता अभी मेरा मर्डर हो।
ये सुनकर आरवी उससे दूर हुई और चारों हंस पड़े। आरवी विनीत को थैंक्स कहती है, विनीत उसकी गाल पर हाथ रखते हुए बोला, दोस्ती में थैंक्स नहीं कहते आरवी, और यहाँ तो दोस्ती डबल वाली है, जाने मन का ख्याल रखना।
और अपना ख्याल? आरवी फट से बोली, तो विनीत ने उसकी गाल पर हल्की सी चपत लगा दी, पागल, तुम्हारा ख्याल रखने को अयांश है, मेरी जाने मन की जान हो तुम, और वो अपनी जान का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है, वो रख लेगा तुम्हारा ख्याल, तुम बस उसका रखना।
आरवी ने पलकें झपका दी। विनीत वर्तिका फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही अभी आरवी से बोला,
आरवी, तुम मिस्टर मेहरा को देखो। दादू की चिंता मत करना, राधे भैया और मैं उनका ध्यान रख लेंगे। एंड प्रॉमिस, मैं दादू को साइड नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर थैंक्स यार कहते हुए आरवी ने उसको साइड हक किया और फिर अभी बेस्ट ऑफ लक आरवी बोल अंदर चला गया। आरवी लॉन में खड़ी अयांश के बारे में सोचने लगी, जो इस वक्त घर पर नहीं था, पर उसे घर कैसे बुलाना है ये अब वो सोच चुकी थी। उसे कैसे मनाना है। आरवी अयांश के बारे में सोचते हुए बोली, अब आप हमसे ज्यादा देर तक दूर, ज्यादा देर हमसे नाराज नहीं रह पाएंगे। कहते ही आरवी तिरछा मुस्कुरा दी। उसी रात अनिकेत जी अपने कमरे में टेबल ड्रॉर के पास खड़े थे, तभी रूम का डोर नॉक हुआ। दरवाजे की तरफ देखा तो सोनाक्षी जी खड़ी थी। अनिकेत जी उनकी तरफ आते हुए बोले, क्या हुआ? सोनाक्षी दरवाजे पर खड़ी बोली, वो मुझे फोन चाहिए, वो तारा से बात करनी है। मेरा फोन मेहरा सदन में रह गया, और तारा भी वही है ना। आगे बोलती कि अनिकेत जी ने अपना फोन जेब से निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। लो, थैंक यू कहते हुए सोनाक्षी जी ने फोन पकड़ लिया और फोन की ओर देखते हुए बोली, लॉक्ड है? अनिकेत जी ने फोन अनलॉक कर वापस उनके हाथ में थमा दिया। वो फिर बोली, लॉक्ड हो जाए तो? लॉक्ड हो जाए तो अनलॉक करने के लिए तुम उस इंसान का नाम लिख देना जिससे मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार किया है। इतना कहकर अनिकेत जी बाथरूम में चले गए। सोनाक्षी जी हॉल में चली आईं। पहले उन्होंने तारा को फोन किया, उससे बात की और फिर फोन को लॉक कर अनलॉक करने की कोशिश की, जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया है। कहते हुए उन्होंने अनु नाम टाइप कर दिया और फोन अनलॉक हो गया। ये देखकर सोनाक्षी जी मुस्कुरा उठी। तभी अनिकेत जी की आवाज आई, हो गई बात? हाँ, कहते हुए सोनाक्षी जी ने उनका फोन उन्हें दे दिया। तारा होटल में है? अनिकेत जी बोले, होटल में? लगता है उसे भी अयांश ने जाने को बोल दिया होगा। सोनाक्षी जी बोली, ऐसा नहीं, वो डर के मारे होटल चली गई। तारा बता रही थी आरवी की फैमिली वापस चली गई है, विनीत वर्तिका भी अपने घर चले गए, हम भी चले आए। तारा अकेली वहां नहीं रह पाई, इसीलिए वो होटल चली गई। अयांश बहुत गुस्से में है और आरवी से नाराज भी। अनिकेत जी परेशान होते हुए बोले, आरवी पर क्यों गुस्सा है? उससे नाराज क्यों हुआ है? उसने तो कुछ नहीं किया।
वो बोल रहे, सोनाक्षी जी बोल पड़ी, आरवी ने क्या किया है ये तुम जानते हो अनिकेत, और उतनी सी वजह काफी है। अयांश का गुस्सा बहुत खतरनाक है, पता है ना? तारा तो चपेट में ना आ जाए, वो तो होटल चली गई, पर आरवी, जिससे वो नाराज है, उसका क्या होगा? ये सुनकर अनिकेत जी को आरवी की फिक्र होने लगी। वो आरवी को फोन लगाते हैं पर वो फोन नहीं उठाती। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोनाक्षी जी को भी आरवी की चिंता होने लगती है, जो कि अयांश के घर आने का वेट कर रही थी। आरवी अब तक उसे कई बार कॉल कर चुकी थी, पर उसने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया था। कहाँ था ये भी आरवी को पता नहीं था। बस वो दरवाजे पर नजरें टिकाए उसके इंतजार में उसको मनाने की तैयारी कर सीढ़ियों पर बैठी थी। आरवी अपने फोन की ओर देखते हुए बोली, 9 बज गए, अब तो आ जाओ। इतनी भी क्या नाराजगी, जो शाम से रात होने को आ गई, आप अभी तक हमारे पास नहीं आए। आ जाइए ना, हम वेट कर रहे हैं, वो भी भूखे प्यासे। विनीत जी ने बोला था, बीवी हो तुम, और बीवी को मौके की जरूरत नहीं होती। बीवी होना ही सबसे बड़ा मौका है आरवी, तुम्हारा। इस मौके का अच्छे से फायदा उठाओ, बीवी वाला जादू चलाओ। हम भी देखते हैं कब तक पिया रूठे रहते हैं तुम्हारे। मुंह बनाते हुए, आए तो जादू चलाएं, रूठे पिया पता नहीं रूठकर कहां गायब हो गए हैं। गर्दन छटकाते हुए, आ जाओ। कहते आरवी ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अयांश आ रहा था।